तो कुरिन्थियों की पहली पत्री का 14वां अध्याय और कुलुसियों की पत्री का 3रा अध्याय में हम जाएंगे थोड़ी देर में। हमारे अपने विषय में हम सब जानते हैं कि हमारी एज क्या है, सबको अपनी अपनी एज पता है, और मैं किसी से पूछने वाला नहीं हूं, लेकिन आपको अपनी एज पता है और या आपकी उम्र पता है। और आपकी एज या हिंदी में उम्र जो है इस बात को बताती है कि आप कितने साल से इस दुनिया में हैं, क्या आपको इस दुनिया में कितने साल हो गए हैं। और देखा जाए तो ये आपकी जो है शरीर की उम्र है या एज है, इतने साल से आपका शरीर इस संसार में है। और पैदा होने के बाद हम सबने कुछ काम किया, पहले हमारे लिए दूसरों ने किया, फिर थोड़ा सा बड़ा होने के बाद हमने खुद ध्यान रखा, इसलिए आज हमारा शरीर अच्छा हाल में है, स्वस्थ है। और इस शरीर को बढ़ने के लिए जब से हम पैदा हुए हैं, हमारे लिए या हमने अपने शरीर के लिए कुछ किया या हमारे माता पिताओं ने किया था शुरुआत में, कि हमें अच्छा खाना दिया गया था या पौष्टिक भोजन हमें मिलता रहा, और इसके बाद या उसके साथ साथ शरीर का व्यायाम भी होता रहा, एक्सरसाइजेस होते रहे, इसलिए शरीर की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह हमारा शरीर के अलावा हमारे पास हमारा दिमाग है, हमारा मन है या प्राण है, और हमारी आत्मा भी है। हमारे प्राण के लिए भी शुरू से बचपन से ही उस पर मेहनत जारी रही, हम स्कूल गए हैं, कॉलेजेस गए हैं, यूनिवर्सिटीज गए हैं, पढ़ाई की, और अलग अलग विषयों की पढ़ाई करने के द्वारा हमारे अपने अपने दिमाग या मन का विकास होता रहा। लैंग्वेजेस पढ़ने के द्वारा हमने सीखा कि हम अपने मन के विचारों को अलग अलग भाषाओं में कैसे प्रकट कर सकते हैं, और हमने गणित सीखा जिसकी वजह से हम हिसाब लगाना जानते हैं, और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया। बिजनेसमैन जानते हैं कि गणित का ज्ञान होना कितना जरूरी है। हमने साइंस सीखा, इसलिए साइंटिफिक बातों की समझ हमें मिली। हमने ज्योग्राफी सीखा, इसलिए हमें पता चला कि हमारे देश के अलावा और भी देश हैं इस दुनिया में, और हमारे जैसे लोग और देशों में भी रहते हैं, ये सब बातें पता चली। हमने इतिहास सीखा जिससे कि हमें पता चला कि जो हमसे पहले थे वो कैसे थे, ये सब बातें हमें पता चलती रही और हमारा मन का विकास हुआ है। अगर हम स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी होती, तो हमारा मन जो है या हमारा दिमाग का इतना विकास नहीं होता, और हम भले ही शरीर के लिहाज से 30 या 40 साल के होंगे, लेकिन हमारा दिमाग की उम्र उतनी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने कुछ सीखा नहीं, हमने कुछ समझा नहीं, इसलिए हमारा दिमाग बहुत ही सीमित लेवल पे काम करता रहा। इसलिए जैसे साइकोलॉजी में कहते हैं ना कि डिलेड माइलस्टोन, हम पहले कहते थे रिटार्डेड माइंड, आजकल रिटार्डेड माइंड नहीं कहते, डिलेड माइलस्टोन कहते हैं, और अच्छा है ये टर्म अच्छा है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जहां पर दिमाग को पहुंचना चाहिए था वहां तक अभी पहुंचा नहीं, अभी माइलस्टोन दूर है, आगे है, हमें वहां पहुंचना है, कोशिश जारी है, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। तो अगर मन का विकास नहीं हुआ या शरीर की उम्र के बराबर मन का विकास नहीं हो रहा है, तो हम इसको डिलेड माइलस्टोन कहते हैं। तो अभी तक हमने शरीर पर ध्यान दिया और दिमाग या मन पर ध्यान दिया, अब हमारा एक और हिस्सा है जिसको आत्मा कहते हैं। तो शरीर और दिमाग के बारे में अभी तक जितनी बातें मैंने की हैं वो आसान था समझना, हमने शायद इस बारे में कभी इतना सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सोचने में मजबूर कर रहा था अभी तक। तो शरीर और मन का विकास के लिए, बढ़ोतरी के लिए कुछ करना पड़ा, जिसकी वजह से हम सबके शरीर स्वस्थ हैं और ठीक है और हमारे मन विकसित है, हम अपने आप को इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इसी तरह हमारी आत्मा भी है हमारे पास, उसका विकास कैसे हो सकता है इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शरीर के बारे में सबको पता है, मन के विषय में सबको पता है, हमारी आत्मा कितनी बड़ी है सोचिए इस बारे में। क्या आपके शरीर की उम्र और आपकी आत्मा की उम्र बराबर है या आपकी आत्मा आपके शरीर से छोटी है? हम सब ने एक बार सुसमाचार सुनने के बाद यीशु मसीह पर विश्वास किया, या यीशु मसीह ने जो काम मानव जाति के लिए किया उस पर विश्वास किया, और उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। और ये नया जन्म हम जानते हैं कि हमारे शरीरों में नहीं हुआ, ना ही हमारे दिमाग में हुआ। ये नया जन्म जो है हमारी आत्मा की है, यानी आत्मा उस दिन नए सिरे से जन्म लिया। तो जिस दिन हम में से हर एक ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और जिसको हम कहते हैं उद्धार पाया या नए सिरे से जन्म पाया, उस दिन हमारी आत्मा, क्योंकि फिर से जन्म लिया, हम कह सकते हैं कि उस दिन हमारी आत्मा का पहला जन्मदिन था। वो सिर्फ एक दिवस का था। आप सब मेरे साथ हैं इस बात में? सबको समझ आ रही है ये बात? जिस दिन हमारा उद्धार हुआ उस दिन हमारी आत्मा जो है सिर्फ एक दिन की थी। अगर 2000 में, सन 2000 में आपने उद्धार पाया है तो ये 2020 है, तो आपकी आत्मा कितने साल की होगी? 20 साल की होगी ना। अगर आपने 2010 में उद्धार पाया है तो आपकी आत्मा कितने साल की होनी चाहिए? कोई एक जन मुझे बताइए अपना वीडियो ऑडियो अनम्यूट करके। अगर आपने 2010 में उद्धार पाया है तो आपकी आत्मा कितनी बड़ी होगी, कितने साल की?
20 साल।
अब ध्यान दीजिए, अगर आपने 2000 में उद्धार पाया है तो आपकी आत्मा 20 साल की होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या आपकी आत्मा 20 साल की हो गई है? क्या आपने आपकी आत्मा की बढ़ोतरी के लिए कुछ किया इन 20 सालों में? इस बारे में हमें सोचना चाहिए। शरीर के लिए हमें पता है कि क्या करना है, हम करते रहे, हमने कभी सोचा नहीं लेकिन करते रहे, और शरीर ठीक है। मन के लिए भी हम करते रहे और आज भी करते हैं, हम अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं। आज हमारे लिए आसान है, इंटरनेट है, गूगल है, हम अलग अलग विषयों पर ढूंढते हैं, छानबीन करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, हम अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं। इसलिए हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम अपडेटेड रहते हैं। हर चीज के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होता है, हम अपने आप को अपडेट करते हैं दिमाग की तौर पर। क्या आत्मा के लेवल पे या आत्मा के लिए जब से हमने नए सिरे से जन्म पाया है उस समय से लेके आज तक हमने क्या किया है आत्मा के लिए कि आत्मा बड़ी हो जाए, आत्मा की बढ़ोतरी हो? और क्या हमें मालूम है कि आत्मा की बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज हम इस विषय को देखते हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री का 14वां अध्याय में हम चलते हैं, इसका 3रा पद को हम पढ़ते हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री 14वां अध्याय और 3रा पद, 1 Corinthians chapter 14 verse 3। परंतु जो सॉरी मैंने 3 बोला, 4 है। तो कुरिन्थियों की पत्री 14:4, 1 Corinthians chapter 14 verse 4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वे अपनी ही उन्नति करता है। जब एक विश्वासी अन्य भाषा में बात करता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि वो अपनी उन्नति करता है। ये उन्नति कहां पर वो करता है? उसके शरीर में? बिल्कुल भी नहीं। शरीर की उन्नति के लिए हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं और कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं। दिमाग की उन्नति के लिए हम क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं और फिर जो कुछ हम सीखते हैं या जो कुछ जानकारी हमें मिलती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारा दिमाग या हमारे मन का विकास होता रहता है। हमारी आत्मा की उन्नति के लिए परमेश्वर की ओर से हमें कुछ मिला है। हमारे पास पवित्र आत्मा है। ध्यान रखना, अभी जब हम आत्मा की बढ़ोतरी की बात करते हैं तो उस पवित्र आत्मा के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी आत्मा, जिसने नए सिरे से उस दिन जन्म लिया था जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उस आत्मा के विषय में बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है कि जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं या अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी उन्नति होती है, और ये उन्नति हमारी आत्मा की है। इसको और स्पष्ट करने के लिए एक और पद को हम देखेंगे इसी अध्याय में। 14वां पद को देखते हैं, 14th verse। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। इस पद में और भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उसमें हमारे जो दिमाग है, बुद्धि है, उसका कोई भी योगदान नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ हमारी आत्मा का है। इसलिए जो 14 पद में लिखा है कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं हमारी उन्नति होती है, वो आत्मा की उन्नति है, क्योंकि आत्मा ही, हमारी अपनी आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर। हमारी अपनी आत्मा पवित्र आत्मा की सहायता से अन्य भाषा में बोलते हैं। हमारी आत्मा की उन्नति के लिए ये एक काम है कि अन्य भाषा में बोलना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। कुछ दिन पहले मैं इस अध्याय को फिर से जानबूझ के उठा के पढ़ा, खोल के पढ़ा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्या लिखा है। कुछ दिन पहले मेरे मन में एक बात आई कि अन्य भाषा में जब मैं बातें करता हूं क्या मुझे वो बातें समझ आती हैं? जवाब ये है कि मुझे नहीं समझ आती, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो मेरे मन में आया कि क्या जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो सही है, वो कुछ काम की बातें हैं, और मुझे मालूम है बाइबल में क्या लिखा है। लेकिन फिर भी मैंने बाइबल खोला और मैंने जोर जोर से इस पैसेज को पढ़ा, विशेष रूप से पहला और दूसरा और तीसरा पद को। इस अध्याय का दूसरा पद में लिखा है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। और मैं इस वर्ष को जोर जोर से पढ़ा था कि मैं अपने कानों से एक फिर सुनूं और फिर उसको उस पर विचार करूं। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। हालांकि मुझे ये बात बहुत सालों से मालूम है, फिर भी मैंने इसको पढ़ा, जोर से पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया, अपने कानों से सुना, अपने आप को फिर से समझाया कि जब मैं अन्य भाषा में बोलता हूं तो मैं परमेश्वर से बातें करता हूं, और मैं जो बोलता हूं कोई नहीं समझ सकता। इसका मतलब मैं खुद भी नहीं समझ सकता। उसके बाद एक और खूबसूरत बात इसमें है, उसको मैंने पढ़ा, यहां पे लिखा है कि क्योंकि वे वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वेद की बातें यानी परमेश्वर की सीक्रेट बातें, गुप्त बातें मैं बोलता हूं आत्मा में होकर, यानी पवित्र आत्मा की सहायता से, और उससे मेरी आत्मिक बढ़ोतरी होती है। 14th पद और 14वां पद, इन दोनों को फिर से आप आज का अध्ययन खत्म करने के बाद आज या कल आप फिर से पढ़ लेना और अच्छी तरह आपको समझ आएगा कि अन्य भाषा में जब हम बातें करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मा की बढ़ोतरी होती है, आत्मा की उन्नति होती है। अब देखिए क्या हमारी आत्मा उतनी बड़ी है जितना जितनी वो होनी चाहिए इस समय। अगर हमने 2000 में उद्धार पाया है तो क्या हमारी आत्मा के लिए हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा आज 20 साल बड़ी है या 20 साल की हो गई है क्योंकि हमने 20 साल पहले उद्धार पाया था। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? सोचिए इस बारे में। और क्या कर सकते हैं हम आत्मा की बढ़ोतरी के लिए? एक तो ये काम हो गया, जैसे शरीर के लिए खाना खाना और फिर एक्सरसाइज करना दोनों जरूरी है। अगर हम सिर्फ खाना खाते रहेंगे तो नतीजा क्या होगा आपको मालूम है, विशेष करके लॉकडाउन के पीरियड में आपको पता है कि कईयों के कपड़े छोटे होंगे, दरवाजे घर के छोटे हो गए होंगे। अगर आप सिर्फ खाते रहेंगे आपको पता है, तो हमें ये भी मालूम है कि खाना खाना जरूरी है और एक्सरसाइज व्यायाम करना जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और बैलेंस में रखने के लिए, ठीक से रखने के लिए। तो ये तो शरीर की बात हमें समझ आती है, हमें अच्छी तरह मालूम भी है, दिमाग की बात हमें मालूम है, अब आत्मा की बात हम कर रहे हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र में ये जो लिखा है कि हम एक नई सृष्टि है, और ये भी कुरिन्थियों की पत्री में ही है, दूसरी पत्री में 5वां अध्याय में, अगर हम नई सृष्टि है तो वो कहां पर है? हमारे शरीर में नहीं, ना हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में हम एक नई सृष्टि है। उस नई सृष्टि को भी समय के साथ साथ बड़ी हो जानी चाहिए। और आज हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या आत्मा में मैं उतना बड़ा हूं या उतनी बड़ी हूं जितना बड़ा मुझे होना चाहिए था? तो एक हमने अभी देखा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से, आत्मिक रीति से हम उन्नति प्राप्त करते हैं। और क्या करना होगा हमें? एक और जगह पर हम जाते हैं, इब्रानियों की पत्री का 5वां अध्याय में चलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया नहीं था, इब्रानियों की पत्री का 5वां अध्याय में परमेश्वर की ओर से एक बात है या एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है, एक आत्मिक सिद्धांत के विषय में हमें सीखने को मिलेगा इब्रानियों की पत्री का 5वां अध्याय में। 5वां अध्याय का 13वां और 14वां पद को हम पढ़ेंगे, 5:13 and 14 Hebrews। 13वां पद में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वजन की पहचान नहीं होती क्योंकि वे बालक है। और 14वां पद कहता है, पर अन्न सियानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए हैं। 14वां पद को फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पर अन्न सियानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। ये सिर्फ शरीर और दिमाग के लिए नहीं, ये आत्मा के लिए भी है। आत्मिक बातों का अभ्यास करना जरूरी है। अगर हम सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे तो आत्मा की बढ़ोतरी थोड़ी सी होगी, लेकिन उसके साथ अभ्यास भी करना जरूरी है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से, परमेश्वर से बातें करने से, वेद की बातें बोलने से आत्मा की बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन वो पूरी तरह नहीं होगी, एक बैलेंस में नहीं होगी, एक और भी काम करना होगा। वो क्या है? आत्मिक बातों का अभ्यास करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। ये कैसे करेंगे आप? इसके लिए हमें आत्मा के द्वारा चलना होगा, आत्मा की बातों को हमें माननी होगी, आत्मा की बातों के अनुसार हमें चलना होगा। आत्मा की यानी पवित्र आत्मा की बातें हमें कैसे पता चलेगी? हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उद्धार पाने से पहले, यानी नया सिरे से जन्म लेने से पहले, हमारा हम जो कुछ भी करते थे अपने दिमाग से करते थे, अपने दिमाग का हम इस्तेमाल करते थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बॉस उस समय तक हमारा जो बॉस थे वो हमारा दिमाग था, हमारे दिमाग के हिसाब से हम सब कुछ करते थे। अब क्योंकि हम नई सृष्टि है, अब क्योंकि हमारा नए सिरे से जन्म हो रखा है, हमें एक इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। अब चाहिए कि हम हमारी आत्मा को बॉस की दर्जा दे, यानी हमारी आत्मा हमें चलाए। पहले नए सिरे से जन्म पाने तक हम कैसे चलते थे? अपने दिमाग से चलते थे, शरीर और दिमाग काम करते थे और हमारी आत्मा की कोई खास भूमिका नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि हमारी आत्मा पवित्र आत्मा से या पवित्र आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्म पाया है, हमें चाहिए कि हम इस आत्मा के द्वारा चलना शुरू करें। और अफसोस की बात है कि अधिकतर लोग आत्मा के द्वारा नहीं चलते। मैंने आपको अभी बताया, आत्मा के द्वारा चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा की बातों को जानने की, सुनने की जरूरत है और फिर उसके अनुसार चलने की जरूरत है। वो कैसे हो सकता है? उसके लिए सबसे आसान तरीका जो है, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलने की बात करते हैं तो सबसे पहले मन में ये विचार आता है कि इसके लिए तो मुझे पहले आत्मा की आवाज को सुननी होगी या आत्मा की बातों को सुननी होगी, उसके लिए मुझे फिर एक जगह बैठना होगा, प्रार्थना करनी होगी। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। पवित्र आत्मा की ओर से बहुत सारी बातें पवित्र शास्त्र में लिखी गई है, तो हम शुरू वहां से करेंगे। परमेश्वर का वचन, जिसको हम बाइबल बोलते हैं, पवित्र शास्त्र बोलते हैं या परमेश्वर का वचन बोलते हैं, इसको पढ़ना और इसके अनुसार चलना, ऐसा करके हम आत्मा के द्वारा चलना शुरू करेंगे। तो एक काम अन्य भाषा में प्रार्थना करना और दूसरा काम पवित्र शास्त्र की बातों के अनुसार चलना या अपने जीवन में बदलाव लाना। जो हम पहले अपने दिमाग से करते रहे उसको ना करके अब आत्मा के द्वारा हम चलना शुरू करेंगे, यानी पवित्र शास्त्र की बातों को हम मानना शुरू करेंगे। अब पवित्र शास्त्र की बातों को मानने के लिए, यानी पवित्र शास्त्र में जो लिखा है, जो आदेश है हमारे लिए, उससे मानने के लिए हमें ये मालूम होना जरूरी है ना कि उसमें क्या लिखा है। और ये मालूम करने के लिए हमें पवित्र शास्त्र को पढ़ना होगा या फिर सुनना होगा। अगर हम पढ़ना नहीं जानते तो हम ऑडियो बाइबल सुन सकते हैं और इसके लिए थोड़ा सा समय निकालना होगा। पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे या ऑडियो बाइबल्स को हम सुनेंगे, फिर जो बातें हमें समझ आ रही है उसके अनुसार हम करना शुरू करेंगे, तब हमारी आत्मा, हमारे दिमाग और हमारे शरीर के साथ साथ बढ़ोतरी हासिल करके आगे बढ़ेगी और हम सिर्फ शरीर से बलवंत और दिमाग से निपुण नहीं, आत्मा से निपुण होंगे। हम आत्मा से हम एक्सपर्ट्स होंगे और हम हर बात में आगे रहेंगे। कलोसियों की पत्री में एक बार हम चलते हैं। कलोसियों की पत्री का तीसरा अध्याय में 16वां पद में कुछ लिखा है, उस पर एक बार हम ध्यान करते हैं। ये नया नियम है, अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है नया नियम से ही देखा है। नया नियम की इस पत्री में 16वां पद में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये आपके लिए और मेरे लिए एक आज्ञा है, नया नियम में एक आज्ञा है हम सबको कि यीशु मसीह के वचन को, यानी पवित्र शास्त्र को अधिकाई से, बहुताई से बसने दो। अगर हम पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे या पवित्र शास्त्र को नहीं सुनेंगे, हम ये काम को कैसे कर सकते हैं? कोलोसियों की पत्रिका 3:16, कोलोसियंस चैप्टर 3:16। यहां पर हम वापस आएंगे शायद, लेकिन फिलहाल हम पुराना नियम में एक बार चलते हैं। पुराना नियम में एक पुस्तक है, पांचवी किताब, जिसको व्यवस्था विवरण का नाम है, जिसको व्यवस्था विवरण कहते हैं या अंग्रेजी में ड्यूटरोनोमी कहते हैं, उसमें चलते हैं। व्यवस्था विवरण जो है रेपिटिशन है, मूसा के द्वारा इसराइली लोग मिस्र देश से निकल आए और लगभग उस कनान देश के पास पहुंच गए हैं, और उस कनान देश में, यानी उस देश में जिसके लिए परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, वहां जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन उससे पहले मूसा उनके साथ बैठ के उनकी 40 साल की हिस्ट्री जो है, 40 साल का इतिहास जो है, उनको संक्षिप्त में फिर से याद दिलाया या उनको बताया, और परमेश्वर ने जो कुछ उनको बताया था, परमेश्वर की ओर से जो नियम इनको दिए गए थे, व्यवस्था जो दी गई थी, वो सब कुछ फिर से एक बार दोहराया। और इस दोहराने के संदर्भ में या इस इतिहास को फिर से एक बार सुनाने के संदर्भ में हमें कुछ नई बातों को भी सीखने को मिलती है। 8वां अध्याय में, पहले अध्याय से मूसा ने उनको बताना शुरू किया कि हम मिस्र देश से निकले थे, फिर हमें ऐसे ऐसे समय लगा था। और आपको शायद ये बात मालूम है कि मिस्र देश से, यानी इजिप्ट से कनान देश तक, इसराइल तक आने के लिए उस समय के हिसाब से देखा जाए तो 11 दिन लगते, लेकिन इनको कितना समय लगा? 40 साल लगे। 40 साल तक परमेश्वर ने उनको उस कनान देश में प्रवेश करने नहीं दिया। 40 साल वो उस जंगल में भटकते रहे। और ऐसा क्यों हुआ, पवित्र शास्त्र में लिखा है, आप जानते हैं, उस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम ये देखते हैं कि 8वां अध्याय का, ड्यूटरोनोमी चैप्टर 8:1, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। आज हमारे इसराइलियों के लिए एक देश, जिसको हम आज इसराइल कहते हैं या कनान देश उस समय में कहते थे, वो जगह परमेश्वर ने, वो देश परमेश्वर ने वादा किया था और उनको कहा था कि उस देश में जाके वहां पे बसने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। दूसरा पद में वो कहता है कि और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वे तुझे नम्र बनाए। तो अगर हमें परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं जल्दी से नहीं मिल रही है, या हमारी प्रार्थनाओं का जवाब एकदम नहीं मिल रहा है जैसे हम चाहते हैं, और परमेश्वर ने जो कुछ अपने वचन में हमसे वादा किया है वो सब कुछ एकदम पूरा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि परमेश्वर हमें थोड़ा सा समय दे रहा हो ताकि हम क्या बन जाए, नम्र बन जाए, और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। जब हम परीक्षाओं में से निकलते हैं, हमें पता चल जाता है, परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर को तो पहले से ही मालूम है, हमें पता चल जाता है कि हमारे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वे मन्ना जिसे ना तू और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु तो मनुष्य जो है, हम, मैं और आप जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह को मानते हैं, हम सिर्फ रोटी से नहीं, यानी रोटी या चावल या जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें सब कुछ है, जो 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 रोज हम खाते हैं, भोजन करते हैं जिससे हमारे शरीर की बढ़ोतरी होती है, सिर्फ उससे हम जीवित नहीं रहेंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए, या हमें किस चीज की जरूरत है? परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वे जीवित रहता है। तो जो हमारे विश्वास के नाते, जो हमारे पुरखा थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनसे परमेश्वर ने कहा, आज हम पर भी लागू है। हम सिर्फ शारीरिक भोजन से जीवित नहीं रह सकते, हमें आत्मिक भोजन की जरूरत है, हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करने की जरूरत है जिसमें हमारी आत्मिक उन्नति होती है। उसके बाद परमेश्वर के वचन की हमें जरूरत है जिसके अनुसार हमें चलना होगा, तब हम पूर्ण रीति से बढ़ोतरी हासिल करते जाएंगे, यानी हम आत्मा में आत्मिक रीति से बढ़ते रहेंगे। अगर ये दोनों काम हम नहीं करते, या इनमें से सिर्फ एक ही काम हम करते हैं, तभी हमारी ठीक रीति से बढ़ोतरी नहीं होगी। मुझे मालूम है कि हमारे चर्च के अधिकतर लोग अन्य भाषा में बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और क्योंकि हम लोग इस बारे में कई बार सिखा भी चुके हैं, बार बार हम बोलते रहते हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि आप लोग सब डेली थोड़ी देर के लिए कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, कुछ लोग आधा घंटे, कुछ लोग एक घंटे अन्य भाषाओं में बोलते हैं। तो उस रीति से आपको आत्मिक बेनिफिट या फायदा हो रहा है, लेकिन क्या आप उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं या और उसके अनुसार चलते भी हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पवित्र शास्त्र की बातों से, परम वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकला है। और तिमत्ती की पत्री में, आपको अभी वहां जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ नोट कर लीजिए और बाद में एक बार जरूर पढ़िएगा, तिमत्ती की दूसरी पत्री का 3 अध्याय का 16 पद में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से हमें मिला है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, यानी परमेश्वर ने प्रेरणा दी, लिखने वालों ने लिखा। परमेश्वर का जो जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है, हमने अभी व्यवस्था विवरण का 8 अध्याय में पढ़ा, जो जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तिमत्ती की पत्री में लिखा है कि जो पवित्र शास्त्र हमारे पास है वो परमेश्वर की प्रेरणा से है, यानी जो जो वचन परमेश्वर, जो जो बातें परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं वो सब कुछ, या उसमें से अधिकतर बातें परमेश्वर ने लिखित रूप में हमें दी है, उसको पढ़ने की और उसके अनुसार चलने की जरूरत है। तब हम आत्मिक रीति से बढ़ेंगे, नहीं तो हम इस गलत फहमी में रहेंगे कि आज मुझे 20 साल हुए, आज मुझे 10 साल हुए, और कुछ लोग ये कह सकेंगे कि, या कह सकते हैं कि मुझे 30 साल हुए प्रभु में विश्वास करके या प्रभु में आए हुए, लेकिन क्या आपकी आत्मा की 30 साल हो गए हैं? क्या आपकी आत्मा 30 साल बड़ी हो गई है? ये हमें देखने की जरूरत है। और हम में से अधिकतर लोगों के पास जवाब आ चुका है कि ऐसा नहीं है। जितने साल प्रभु में आए हुए हैं या जितने साल हो गए हैं प्रभु में आने के बाद, उतनी बड़ी नहीं है हमारी आत्मा, तो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। खूब अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, और जब कभी आपको ऐसा लगता है कि ये अन्य भाषा में जिसको मैं खुद नहीं समझ पाता हूं या समझ पाती हूं, इसमें बोल के क्या फायदा है, तो आप जैसे मैंने किया था मंगलवार के दिन, मैंने किया था कुरिंदियों की पहली पत्र का 14वां अध्याय को खोल के पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ लेना, जोर से पढ़ लेना या खुद भी, ताकि आप खुद भी सुन सके, और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना शुरू कीजिए। पवित्र शास्त्र को पढ़िए और जो बातें आपको समझ आती हैं उसको करना शुरू कीजिए। डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली एक अच्छा उपदेशक है, टीचर है, वो अक्सर कहते हैं कि ओबे द वर्ड एंड लीव द कॉन्सिक्वेंसेस टू गॉड, ओबे द वर्ड एंड लीव द कॉन्सिक्वेंसेस टू हिम, यानी पवित्र शास्त्र की बातों को मानो और उसके बाद क्या परिणाम निकलता है वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ो। और मैं भी आपसे यही कहूंगा, परमेश्वर की बातें जब आप तक पहुंचती है तो आप दाएं बाएं मत देखिए, उसको मानना शुरू कीजिए, उसके अनुसार चलना शुरू कीजिए, और इस बात से मत डरिए कि अगर मैं पवित्र शास्त्र के अनुसार कुछ करूं तो क्या होगा या क्या परिणाम निकलेगा, कौन आपसे नाराज होगा, इन बातों पर गौर मत कीजिए, या कितना नुकसान हो सकता है ये मत देखिए, पवित्र शास्त्र की बातों को मानना शुरू कीजिए, पवित्र शास्त्र की बातों के अनुसार चलना शुरू कीजिए, तब और केवल तब आप आत्मिक रीति से बढ़ेंगे। इसलिए और ये मत देखिए जो बातें मैंने आपको अभी बताई है, ये मैं जानता हूं कि जरूर पुराने नियम से है, कौन सा था, व्यवस्था वेरन की बात है, लेकिन पुराना नियम में परमेश्वर की बातें जो है वो हमारे लिए लागू है, और कोई किसी को भी, या आप कभी इंटरनेट में टीचिंग सुनते हैं या टेलीविजन में किसी की टीचिंग सुनते हैं और कोई आपको ये कहता है कि पुराना नियम की बातें हमारे लिए नहीं है, मैं आपसे कहूंगा कि ऐसी टीचिंग्स मत सुनिए, क्योंकि जितना नया नियम हमारे लिए है उतना पुराना नियम भी है। यीशु मसीह ने मत्ती रजत सुसमाचार का 5वां अध्याय में कहा था कि मैं व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आया, पुराना नियम को खत्म करने के लिए नहीं आया हूं, मैं पुराने नियम की बातों को, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए मैं कहता हूं पुराना नियम में जाइए, और पुराना नियम में परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पुराने नियम में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिसका जब आप अध्ययन करेंगे आपको परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ समझ आएगा। इसलिए पवित्र शास्त्र को पढ़िए, कहीं से भी शुरू कीजिए, पढ़िए और जो बातें आपको समझ आती है उसके अनुसार चलना शुरू कीजिए, तब आपकी आत्मा बढ़ेगी और आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग के साथ साथ आपकी आत्मा भी हेल्दी रहेगी, और आप आत्मिक रीति से यानी हेल्दी रहेंगे और आप मजबूत रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, और तब आप कह सकेंगे कि आज वाकई में यीशु मसीह में विश्वास करते हुए मुझे इतने साल हो गए। इसके साथ हम आज का अध्ययन समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद, आज जो हमने अध्ययन किया, आज जो बातें हमें समझ आई, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझसे मांगते हैं परमेश्वर की तेरा अनुग्रह हम पर बहुताय से हो, ताकि हम पवित्र शास्त्र के, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर, वैसे हम करने वाले और चलने वाले बन सके। हमारी सहायता करना कि हम रोज अन्य अन्य भाषा में बातें कर सके, और परमेश्वर हम पवित्र शास्त्र की बातों के अनुसार चलना भी शुरू करें। जो बातें हमें समझ नहीं आती वो उन बातों को लेके पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, ताकि हमें समझ आए। जो बातें हमारे लिए कठिन है, मुश्किल है, उससे परमेश्वर तू अपने आप आसान कर देगा कि हम तेरे वचनों में चलने वाले बनेंगे। इस तरह हमारी आत्मा की बढ़ोतरी होगी, इस तरह हम आत्मा में मजबूत रहेंगे, और कोई भी हालात, कोई भी सामर्थ हमें परमेश्वर के मर्जी में चलने से रोक नहीं सकेगी। हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और आज जितने भी लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में है उन सबको परमेश्वर में आशीष देता हूँ।